أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. عموما جوانوں کو علم ہے انشاءاللہ کہ ہم آپ لوگوں سے سیاسی موضوعات پر مخاطب ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عالمی حالات پر, ہماری کوشش ہوتی ہے ملکی حالات پر, اہم موضوعات پر جتنا خدا نے ہمیں توفیق دی ہے آپ کے سامنے ان موضوعات کو کھولیں. سیاسی موضوعات پہ گمراہی کا امکان بہت زیادہ ہے. تمام علوم میں سیاست ایک مختلف اور مشکل امر ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب تک آپ نہ پڑھا ہو لگتا ہے فلسفہ بہت مشکل علم ہے, آپ نے نہ پڑھا ہو لگتا ہے عرفان بہت مشکل علم ہے. لیکن آپ یقین کر لیں کہ جو مہارت رکھتے ہیں ایران میں فلسفے پر یا عرفان پر, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سب سے مشکل امر ہے وہ سیاست ہے. اچھا, نتائج کے اعتبار سے بھی ایسا ہے. آپ ایک فلسفی غلطی کر دیں, آپ ایک عرفانی غلطی کر دیں, آپ فقہی غلطی کر دیں, اس کا اثر زیادہ سے زیادہ انسان کی حد تک, ذات تک محدود ہوتا ہے. نظریہ غلط ہو گیا, بعد میں آنے والا صحیح کر لے گا. لیکن سیاست کی غلطی قوموں کے لیے, ملتوں کے لیے آخری غلطیاں ہوتی ہیں. ہو گئیں تو ہو گئیں, اب آپ اس کو دوبارہ پلٹا نہیں سکتے. یہ ہو گیا, ایک بار نکل گیا تیر, ایسا ہے جو نکل گیا تو نکل گیا. اس لیے سیاست ایک مشکل امر ہے. اس سے زیادہ مشکل تجزیہ و تحلیل ہے کہ بھائی سمجھ میں آئے کیسے, راستہ سیدھا سمجھ میں آئے کیسے. یہ اس سے بھی زیادہ مشکل امر ہے, اس کو سمجھنا صحیح راستے تک اور اس کے بعد صحیح ہدف تک اور صحیح وسیلے کے ذریعے سے پہنچنا, صحیح موضوع سمجھ میں آ جائے, یہ بہت مشکل امر ہے. شارٹ کٹ بتائیں آپ کو. سیاسی امور میں خصوصاً تجزیہ میں, خصوصاً جو آپ کے اطراف میں ہو رہا ہے پاکستان کے باہر, عالم اسلام میں ہاٹ ایشوز, لبنان میں کیا ہو رہا ہے, شام میں کیا ہو رہا ہے, عراق میں اس وقت داعش ہے, یمن سعودی عربیہ ڈائریکٹ کود گیا ہے. شارٹ کٹ یہ کہ آپ دو شخصیات کو دیکھیے. میں نے کیا کہا آپ سے, سیاست ایک مشکل علم ہے, تجزیہ و تحلیل کرنا کوئی آسان کام نہیں. غلطی ہو جائے عملی اسٹیپس اٹھاتے وقت تو پوری پوری ملتوں پہ اثرات ہوتے ہیں. اب میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, جوانوں کو اویئر ہونا چاہیے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ طالب علم ہوں, آپ اسٹوڈنٹ ہوں اور ہوتے ہوئے کسی تنظیم کے اسٹوڈنٹ تنظیم کے ممبر بھی ہوں, اور پھر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ صحیح نتیجہ, صحیح بات, صحیح ہدف, صحیح وسیلہ, صحیح تجزیہ, یہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, غلط ہے. ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آسان طریقہ ویسے تو ایک لانگ ٹرم بھی ہے, میں اس طرف لے جا نہیں رہا آپ لوگوں کو, کیونکہ میں اس کو لے کے جاؤں گا اگر کوئی چاہے خود تجزیہ نگار بننا تو شاید اس کے لیے زیادہ مفید ہو کہ ہم اس لانگ ٹرم پر بات کریں کہ بھائی پولیٹیکل سائنس کا کیسے ایک اسٹوڈنٹ بنتا ہے. صرف پاکستان میں رائج تعلیم نہیں, کتابیں نہیں پڑھنی آپ کو, کون کون سے موضوعات پہ کام کرنا ہوگا, کس کن شخصیات کو, خالی اردو زبان بولنے والے یا انگلش بولنے والے نہیں, کن فارسی زبان اور انگلش زبان والوں کو آپ کو, فارسی اور عربی زبان والوں کو آپ کو سننا پڑے گا. یہ ایک لمبا پروگرام ہے کہ آپ صحیح تجزیہ و تحلیل کے لیے خود باقاعدہ کودیں اس میدان میں اور پڑھیں. شارٹ کٹ کیا ہے؟ شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ دو انسان, دو شخصیات ایسی ہیں اس وقت اس دنیا میں موجود کہ اگر آپ کوشش کریں ان کی باتوں تک پہنچ جائیں, آگاہ رہیں کہ انہوں نے کیا کہا, اور وہ تقریباً مہینے میں دونوں ہی شخصیات گفتگو کرتی ہیں. اگر آپ ان دو شخصیات تک پہنچ جائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ نہ لوکل ایشوز نہ باہر عالمی حالات, کہیں پر بھی آپ شاید گمراہ نہ ہو پائیں. چاہے میڈیا جتنا ہی کچھ بھی بولتا رہے, تجزیہ نگار پاکستان کے کچھ بھی کہتے رہیں, نہ جاننے والے ہمارے بہت سارے نادان دوست ہیں وہ جیسے ہی تجزیہ کرتے رہیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ دو آدمیوں کو مسلسل سن رہے ہیں تو انشاءاللہ گمراہی کا امکان کم سے کم ہے. اس میں ایک رہبر معظم کی شخصیت ہے, نہ صرف صحیح ہوتا ہے تجزیہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بلکہ اس میں حالات से निपटने के रास्ते भी बताए जाते हैं, यानी सिर्फ तजिया और तहलील नहीं होता बल्कि सॉल्यूशंस होते हैं कि भाई कैसे, कौन सा मसला इम्पॉर्टेंट है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। रहबर मौज़म अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरी शख्सियत सैयद हसन नसरुल्लाह की, इन दो शख्सियात, कम से कम इन दो शख्सियात की बातों तक किसी भी तरीके से पहुँचें। अगर वो अरबी में बात करते हैं, अब ये बहाना नहीं है आपके पास, अब अरबी में वो करते होंगे लेकिन ये इंग्लिश में तर्जुमा हो जाता है। अगर रहबर फारसी में बात करते होंगे लेकिन वो उर्दू में भी और इंग्लिश में भी तर्जुमा हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करें तो आप इन दोनों की बातों तक बहुत आसानी पहुँच सकते हैं। वसाइल अब आपके पास हैं, अब आपके पास वसाइल मौजूद हैं कि ये दो, अब बहाना नहीं है। कभी आपसे पहले वाली नस्लें जो 10 साल पहले थी बहाना करती तो करती। और अगर आप कहें फारसी में ही है बात, इंग्लिश में नहीं आ रही, फलां में नहीं आ रही, तो भाई फारसी भी सीखनी चाहिए दुनिया हासिल करने के लिए। दुनिया हासिल करने के लिए इंग्लिश सीख लेते हैं आप, दीन हासिल करने के लिए, आखरत के लिए फारसी नहीं सीख सकते, सीखनी चाहिए। कोई यकीन कर लीजिए, कोई मवाजना नहीं इंग्लिश और फारसी ज़बान में कि हम कहें कि मुकाबला करें तो कौन सी ज़बान इंपॉर्टेंट है। इनका मुकाबला कोई नहीं है, वैल्यू और हैसियत ही नहीं है इंग्लिश की फारसी ज़बान के मुकाबले में, कि जो आपको आनी चाहिए, हर शिया को आनी चाहिए। हमें अरबी आनी चाहिए, हमें फारसी आनी चाहिए। चलिए अरबी ज़रा एक मुश्किल अम्र है लेकिन फारसी इतना मुश्किल मसला नहीं है। सिर्फ 6 महीने कोई अगर तवज्जो से फारसी की क्लासेस ले ले वो पढ़ने के काबिल हो जाता है, आराम से वो किताबें पढ़ने के काबिल हो जाता है, वो तकरीर सुने तो आवाज़ समझ में आने लगती है। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा बाशऊर होने के लिए इंशाल्लाह जल्दी अपनी इस कमी पर, इस कमज़ोरी पर काबू पाएंगे और फारसी ज़बान को सीखेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रहबर मौज़म की आखिरी तकरीर के जो बयानात हैं उनके, जो रहबर मौज़म ने फरमाए, दीदार था माह रमज़ान का एक अफ्तार है और इसमें कौन लोग आए हुए, इस इनकलाब इस्लामी के सारा इम्पॉर्टेंट तबका इस वक्त आया हुआ है रहबर को सुनने के लिए। सारा इम्पॉर्टेंट तबका क्या मतलब, सारे पार्लियामेंटेरियंस आए हुए, खबरगान सारी आई हुई है, निगहबान सारी आई हुई है, 3 बड़े इंपॉर्टेंट इदारे, चौथा जस्टिस, पूरा का पूरा अदालती निज़ाम बैठा हुआ है आपके सामने, सारे फ़ौज के सरबरा बड़े आए हुए, अवामी फ़ौज के सारे सरबरा आए हुए। तो एक बहुत बड़ी अफ्तार है, कमाल, सारे मसूलीन इम्पॉर्टेंट तरीन, पुराने सारे सुदूर आए हुए, यानी अहमद नजाद भी बैठे हुए, तो कोई भी शख्सियत बची नहीं थी, सब तकरीबन आए हुए। और रहबर अमूमन इस दिन के लिए बहुत ही अहम बातों को महफूज रखते हैं। मुझे याद आ रहा है पिछली दफ़ा या यहाँ पर या कहीं पर हुआ था कि राय क्या है इस इंतखाबी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने कहा था कि मुज़ाकरात पर एहतियात से बात करनी चाहिए जब तक कि रहबर की कोई निगाह ना आ जाए, वरना हम उल्टी सीधी बातें ही करते रहेंगे। अखबार, हम भी तो यही मीडिया है ना, सामने वाला यही उम्मत अखबार बता रहा है आपको, यही पाकिस्तान के टेलीविजन्स जो बोल रहे हैं आपको यही बता रहे हैं। आप कहाँ गहराई के साथ जाते हैं, बहुत कम लोग आप में इस्लाम टाइम्स को देख रहे होंगे या किसी ऐसी वेबसाइट को देख रहे होंगे जो कुछ ना कुछ हकीकत बता रही हो, नहीं देख रहे होते। हम तो इन्हीं तजिया तहलील, ये जो माशरे में आम है, इसी से अपना नज़रिया बना रहे होते हैं, इसी से अपनी फ़िक्र और नज़र बना रहे होते हैं, जो गलत है, गुमराह हो जाएंगे आप। बार तो हमने एहतियात की थी और हमने कहा था कि बात करना सही नहीं है, सिर्फ जो हो रहा है वो बता देते हैं, क्यों हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। हमें थोड़ी इजाज़त दें कि रहबर मौज़म की निगाह जो है वो सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर ने 3 मौज़ूआत को उठाया, 4 दिन से ज़्यादा पुरानी ये तकरीर नहीं है, 3-4 दिन से ज़्यादा पुरानी, लेकिन मैं चाह रहा था कि नौजवानों को कम से कम इन बातों से आगाह होना चाहिए, तो इसलिए हमने अभी पहले मरहले में कोशिश करेंगे कि ये खिताब के सारे अहम मतालब आपके सामने बयान हो जाएं, और इंशाल्लाह इसी ज़मन में जो भी इशू हॉट है, जो भी इशू इस वक्त आलम इस्लाम का हॉट है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि रहबर की निगाह आपको पता चले तो ये आपके लिए भी बहुत मुफीद होगी। रहबर मौज़म ने शुरू यहाँ से किया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद जब खुतबा दिया, खुतबा पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सद्दद अलसिनतना, खुदाया हमारी ज़बानों को, अलसिनतना हमारी ज़बानों को, बिस्सवाब वल हिकमा रास्ता दिखा, सवाब स्वाद से वाला सवाब नहीं, सवाब से मतलब सीधा रास्ता अगर स्वाद से हो, और सवाब बिस्सवाब वल हिकमा, और बात भी जो हम कर सकें, हमारी ज़बान को खुदा इस काबिल कर दे कि हम सीधे रास्ते की निशानदेहियाँ करें, जब भी बोलें अच्छा बोलें और हिकमत के साथ बोलें। यहाँ से रहबर ने आगाज़ किया अपनी गुफ्तगू का इस हदीस को पढ़ने के बाद, कहा कि माह रमज़ान है, रमज़ान की दुआओं का ज़िक्र किया। पता है आपको मग़फ़िरत का महीना है, पता है आपको दुआओं का महीना है। खुदा ने सारे दरवाज़े खोले हुए हैं तौबा के, सारे दरवाज़े खोले हुए हैं तौबा के। 10 दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। 10वां दिन इंशाल्लाह आज आपका शुरू होगा, 10वां दिन। 20 दिन रह गए हैं टोटल, 19 दिन या 20 दिन। अगर अभी तक रमज़ान की बरकतें, अभी तक जो बरकत आपकी ज़िंदगी में आ जानी चाहिए थी, जो इस्तग़फ़ार हमें हकीकी कर लेनी चाहिए थी, जिन बुराइयों को खुदा 30 दिन आपसे प्रैक्टिस करवा रहा है, जवानों से खुदा 30 दिन प्रैक्टिस करवा रहा है कि जो तुम समझते हो कि तुम छोड़ नहीं सकते, देखो तुमने छोड़ दिया है, तुमने करके दिखाया है, तुम अपने ऊपर अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान रहे हो। थोड़ा लंबा पीरियड है, नमाज में भी आदमी समझता है, लेकिन नमाज से कहीं ज़्यादा इंसान रोज़े की हालत में अपने आप पर अल्लाह को नाजिर पाता है। जभी तो वो हराम तो छोड़े, हलाल चीज़ों से रुका हुआ है। माह रमज़ान हराम चीज़ों से मना का महीना नहीं है, हलाल चीज़ों से मना का महीना है। हराम तो छोड़ना ही है आम हालात में भी, ना सिर्फ माह रमज़ान में, रमज़ान में हलाल को भी छोड़ना है जो बाज़ाहिर हो सकता है हलाल हो। तो बहरहाल रमज़ान का ज़िक्र कर रहे हैं, कहा कि माह मुबारक रमज़ान की जो दुआएं हैं, कहा है कि इसमें कितनी ज़्यादा बातें हुई हैं दुनियावी ज़िंदगी को छोड़ के, दुनियावी ज़िंदगी पर कम, आलम मर्ग, आलम कब्र, आलम क़यामत, गिरफ्तारी हर इंसान, गिरफ्तारी हर इंसान दर मवाजे व हिसाब व किताब, यानी कितना ज़िक्र है आख़रत का। दुआएं इंशाल्लाह अगर हमें तौफीक मिल रही है, अबू हमज़ा सोमाली जहां हम दुआ इफ्तिताह, इंशाल्लाह आपको मालूम है ईरानी माशरे में दुआ इफ्तिताह रोज़ाना पढ़ी जाने वाली दुआ है माह रमज़ान में। पूरे 30 दिन है भी रमज़ान की दुआ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सबसे मरूफ दुआ है जिसे इफ्तिताह के उनवान से, यानी आगाज़ रमज़ान, और इसमें इतना मुबारकबाद, इतना वेलकम किया गया है कि अजीब है, यानी हमारे चेहरे उतर रहे होते हैं, रमज़ान करीब आ रहा है, अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम वेलकम कर रहे होते हैं माह रमज़ान आ रहा है, जा रहा होता है तो अफसोस कर रहे होते हैं, बाकायदा गम मना रहे होते हैं कि माह रमज़ान जा रहा है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। बहरहाल कहा कि जो दुआएँ मंसूब हैं माह रमज़ान की, उसमें कितना ज़्यादा ज़िक्र हुआ कि तुम्हारी ये ज़िंदगी जो दुनियावी है बड़ी महदूद है, एक बहुत बड़ा तुमने इसके बाद, इस दुनिया से जाने के बाद एक बहुत बड़ा वक्त तुमने आखरत, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बहरहाल मरने के बाद यहाँ से मर जाओगे, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, फिर रहोगे का, सारी दुआएं आपको उस तरफ मुतवज्जा करती हैं। फिर आप रहबर ने दुआ अबू हमज़ा सोमाली की बहुत सारे वर्डिंग, खुद अरबी ज़बान के बहुत सारे कलमात बयान किए, मैं सारे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसके तर्जुमे कर रहा हूँ। कहते हैं कि दुआ अबू हमज़ा सोमाली में फरमाता है खुदा कि रहम करे अल्लाह मुझ पर उस वक्त रहम करे कि जब मुझे गुसल दिया जा रहा होगा, जब मुझे कफन और दफन दिया जा रहा होगा, जब लोग मेरे जनाजे को अपने कांधों पर उठा के घूम रहे होंगे, जब मुझे दफनाने के लिए कब्र में डाल दिया जाएगा, यानी तमाम मौक़ों पर अल्लाह से अभी से मग़फ़रत तलब करें अभी से। और ये मरहला सब के साथ आना है, देखिए ना, एक ऐसी बात, हम कोर्स पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई मुख्तलिफ आपने फील्ड्स ले रखी हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई जो इस वक्त सोशल साइंसेज में पढ़ रहा है कभी भी इंजीनियरिंग में वो मौजूआत नहीं आएंगे, पता होता है भाई मौजूआत अलग अलग हैं, इसलिए कभी भी ये बहस नहीं हो रही होती है कि यार ये बात तो एक ऐसा मरहला है सबको गुजरना है, नहीं होता। हम कह रहे हैं आपसे कि ये वो रहबर ने बातें की अबू हमज़ा सोमाली के तर्जुमे में कि जो हर एक के साथ होना है, हम और आप सब के साथ होना है, तैयारी इसकी करें जो हर एक को जिस मरहले से गुजरना ही गुजरना है, ना कि उन पर ज़्यादा वक्त दें कि जिसके लिए सिर्फ दुनिया बनती है, जिसके हासिल करने से दुनिया बनती है। रहबर अब ये बातें आगाज़ हो रहा है, मसूलीन बैठे हुए और उनको पहले मरहले में डराया जा रहा है कि भाई ये दुनिया बड़ी आर्जी है, तुम यहाँ पर बैठ के सोच रहे हो तो पोस्ट तुम्हारे पास है, सीट तुम्हारे पास है, जो चाहे करो, इस तरह से नहीं ज़िंदगी, इस तरह से नहीं गुजारनी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ताकि ज़बान को कंट्रोल करें, मसूलीन से कह रहे हैं زبان کو، اپنے اعمال کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو کنٹرول کریں. کہتے ہیں یہ مہینہ خشوع و خضوع کا مہینہ ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کریں. یہ ماہ استغفار کا مہینہ ہے، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں. سارے دروازے کھلے ہوئے، بڑی تاکید کر رہے ہیں رہبر معظم دعاؤں کی صورت میں کہ سارے دروازے کھلے ہوئے توبہ کے، استغفار کے. اگر اس مہینے سے بھی حاصل نہ کر سکیں تو بقیہ 11 مہینے بہت مشکل ہیں. اس مہینے میں اللہ آمادہ ہے، فرشتوں کو تیار رکھا ہوا ہے کہ آپ بس ایک بار کہیں زبان سے. اور استغفار کا معنی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے کسی کام پر توبہ کی تو اس کا مطلب ہے کہ پلٹنا نہیں ہے اس طرف، کبھی بھی نہیں پلٹنا. استغفار کا اصل معنی یہ ہے، توبہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں کر لی توبہ پھر کبھی اس کی طرف پلٹنا نہیں ہے. انشاءاللہ خدا ہم اس قابل کرے کہ ہم اس مہینے میں حقیقی توبہ کر سکیں. کا 3 موضوعات کو چاروں آپ کے سامنے بیان کروں، یعنی یہ بات کر لی عمومی نصیحت سب کو، اس کے بعد کا 3 موضوعات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا مسئلہ اقتصادی مسئلہ ہے جو ایران کو درپیش ہے، اقتصادی مسئلہ جو ایران کو درپیش ہے. کا دوسرا مسئلہ علاقے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں سوری دوسرا نہیں وہ تیسرا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کہا کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں ایٹومک انرجی کے ایشو پر ایران 5+1 کے ساتھ ایران جو مذاکرات کر رہا ہے، دوسرا مسئلہ ہے جو بیان کرنا چاہوں گا. اور تیسرا مسئلہ علاقے کے مسائل ہیں، لیکن اس میں یہ بات کہی کہ اگر میں وہاں تک پہنچ پایا، وقت ملا، تو پھر علاقے کے مسائل پر بھی بات کروں گا، لیکن ان 2 موضوعات پر. پھر دوبارہ شروع کیا، ماہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے. تقوی رہبر فرماتے ہیں، تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل میں مراقبت دائمی کا لفظ استعمال کیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہمیشہ اپنے اوپر نگاہ رکھنا، یہ ہے تقوی. ہمیشہ اپنے اوپر نگاہ رکھنا یعنی خدا کو حاضر و ناظر جاننا، یہ دیکھنا. بھائی دیکھیں، آپ چھوٹا سا بھی برا کام ہو، بہت ہی چھوٹا سا اور معمولی سا، آپ متصل آگے پیچھے نگاہ کرتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. دیکھتے ہیں چھوٹا سا کام ہوتا ہے اور آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اس کام کو میں کر رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ اسی طرح اللہ کو اپنے اوپر حاضر اور ناظر جانو. خدا تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو خدا تو دیکھ رہا ہے. بہرحال کا تقوی شخصی بھی ہوتا ہے، فردی بھی ہوتا ہے، تقوی اجتماعی بھی ہوتا ہے. اجتماعی تقوی کیا ہے؟ یعنی جب آپ اپنے آپ کو بچانے کی بات کرتے ہیں گناہوں سے تو اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کریں، یہ اجتماعی تقوی ہے. اپنی تنظیم کو بچانے کی کوشش کریں آپ لوگوں سے اگر مخاطب ہوتے، یہ اجتماعی تقوی ہے. آپ کو فکر ہے، غلط فکر، آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ کوئی غلط نظریہ فردی شخصی دماغ میں نہ آ جائے، تقوی اس کو بچاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ملک تباہ ہو رہا ہو، اجتماعی تقوی آپ میں داخل نہ ہو پائے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اقتصادی مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں. اقتصادی مسئلے کو شروع کیا ہے رہبر معظم نے. کہتے ہیں کہ میں نے اس معاشرے کے اندر کئی مرتبہ اس بات کی ضرورت محسوس کی ہے. تقوی کے اوپر 2 باتیں بڑی اچھی کہیں. آپ کو پتہ ہے تقوی کا جو اثر ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کہتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے، پھنسے ہوئے موضوعات، مشکل موضوعات، پھنسے ہوئے موضوعات، بند دروازے تقوی کھول دیتا ہے. پھر کہا یرزقہ من حیث لا یحتسب، اگر تقوی اختیار کریں اللہ رزق عطا کرتا ہے ایسی جگہ سے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بات کہہ کے رہبر آ رہے ہیں، ملک اقتصادی لحاظ سے پریشانیوں کا شکار ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، رہبر کہتے ہیں. لیکن مسئولین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حل یہ ہے کہ ہم وابستہ ہو جائیں، اقتصادی لحاظ سے مشکلات ہیں، حل آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وابستہ ہو جائیں، ہم امریکہ کی بات مان لیں، ہم برطانیہ سے رابطے کو جوڑ لیں، ہم آہستہ آہستہ منطقے کے ظالم حکمران جو ظلم کر رہے ہیں اس پر آنکھیں بند کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں روابط بہتر کرنے. کیوں روابط بہتر کرنے؟ روابط اس لیے بہتر کرنے کہ رابطہ بہتر ہوگا تو پابندیاں ہٹ جائیں گی، پابندیاں ہٹ جائیں گی ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے گی. خوشحالی نہیں آئے گی، پتہ ہے آپ کو پابندی ہٹنے سے ہونا کیا ہے. پابندیاں ہٹ جائیں گی تو لوگ سمجھ رہے ہیں، ایران میں لوگ سمجھ رہے ہیں، رہبر نے کہا کہ کیا طریقہ کار ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اجتماعی تقوی اختیار کریں، اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ایمان لائیں ان باتوں پر کہ تقوی جو ہے وہ مخرج بھی ہے، मुश्किलात से निकलने का भी और रिस्क के आने का भी, तकवा अगर इज्तमाही हो। फिर रहबर ने फरमाया कि हमने इसका सलूशन पेश किया है, इक्तसाद मुकावमती, इसको ज़रा इस्तिलाह रहबर की है, इसलिए इसको इसी तरह से हिफ्ज कर लें कि इक्तसाद यानी इकनॉमी किस पर, मुकावमत पर, रेजिस्टेंस के ऊपर। यानी क्या मतलब, रहबर ये चाह रहे हैं, आगे इन्होंने तशरीह किया बड़ी तफसील से इस बात को, रहबर ने खोला कि इससे क्या मुराद है। कहते हैं कि इससे मुराद समझा रहे मिसाल के ज़रिए से, कहा कि इससे पहले का जो मॉडल था ना, जो इस्लामी ममालिक को यूरोप की तरफ से एक मॉडल मिला हुआ था इक्तसाद का, वो क्या हुआ करता था, वो ये था कि वो आपका एक नाम रखते हैं, आपको कहते हैं जहान सेवम, पता है ना आपको, तीसरी दुनिया के लोग, थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं आप लोग, थर्ड वर्ल्ड, ये हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हम क्या कहते हैं, बाबा एक तो वह जो तरक्की कर चुका, एक वो है जो तरक्की कर रहा है, तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर और बैकवर्ड, यानी अभी आपको खड़ा होना सीखना है, अभी आपको चलना सीखना है, अभी आपको बैठना सीखना है, अभी आपके तमद्दुन आना है, अभी आपकी सकाफत आनी है, अभी आपको इकनॉमी समझानी है हमने। रेवर ने कहा कि तीसरी दुनिया का नाम देते हैं पहले हमें, और उसके बाद अपने यहाँ का मॉडल हम पर मुसल्लत करते हैं, डिक्टेट करते हैं बाकायदा कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। पाकिस्तान डिक्टेट होता है, पता है आपको, डिक्टेट होता है, हम नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से खर्च, इस मुल्क में भी नहीं कर सकते भाई, कौन सा पुल कहाँ बनाना चाहिए आपके इख्तियारात में नहीं है, कौन सा डैम कहाँ बनाना चाहिए आपके इख्तियारात में नहीं है, कौन सी सड़क जिसको आप मोटरवे कहें, हाईवे कहें, कहाँ कौन से शहरों के दरमियान होनी चाहिए आपके इख्तियार में नहीं है, डिक्टेट होता है बाकायदा। तीसरा, हम तीसरी दुनिया के लोग, मॉडल हमारे लिए तयशुदा है, डिक्टेट रहबर कह रहे हैं, इसकी टक्कर पर इक्तसाद मुकावमती, वो क्या है, वो यह है कि इस मुल्क में रहबर ने गिनवाई ज़रफियतें, गिनवाई कहा कि हमारी ज़रफियतें देखिए, यानी मुराद यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ देखिए क्या क्या हैं। पहली कहा, इनकलाब से पहले और इनकलाब के बाद जितनी दुनिया इस वक्त नौजवानों की, इस हमारे ईरान मुल्क में पढ़े लिखों की, मुख्तलिफ फील्डों के मिलियंस में हैं लोग, मिलियंस में, अभी हज़ारों की बात नहीं हो रही, लाखों की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान सारे सब्जेक्ट की यूनिवर्सिटीज़ बना चुका है, सारे सब्जेक्ट की यूनिवर्सिटीज़ बना चुका है, आपको इतना अंदाज़ा नहीं है। आपसे पहले वाली नस्ल के बहुत सारे लोग अफसोस करते थे कि हम ईरान में डॉक्टर हुआ करते थे, 20 साल पहले की बातें, 25 साल पहले की बातें, हम ईरान में फला काम कर रहे थे, हम इंजीनियर थे, हम ये थे, हमें फारिग कर दिया, हमें निकाल दिया गया। भाई मसाला ये है कि जब उनके यहाँ शाह का ज़माना था, जैसे आज सऊदी अरबिया है, आज सऊदी अरबिया है, आपको यकीन आएगा नहीं आएगा कि सुई भी नहीं बना सकता, सुई क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसका जो इकोनॉमी है ये डिपेंड इकोनॉमी है, इनको इजाज़त नहीं है। ये तीसरी दुनिया का वो इलाके हैं, वो मुल्क हैं, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, बल्कि अक्सरियत ऐसे ही है कि वो इम्पोर्ट करती है अपने वसाइल दे के, हमारे यहाँ सोना निकलता है, अच्छा हमारे पास तेल है, ओहो आपके पास गैस है, और क्या, मादनियात भरी पड़ी हैं, फिर क्या हो रहा है, बाहर की कंपनीज आती हैं, आके आपके यहाँ की चीज़ें ले जाती हैं, ले जाने के बाद आपको उसके बस पैसे नहीं देती हैं, कहती हैं कि अब तुम्हारे बताओ किस किस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ले लो, कोई गाड़ियाँ दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान दे रहा है, कोई फलां एग्रीकल्चर की चीज़ें आपको दे रहा है, कोई असलाह दे रहा है। सऊदी अरबिया सुई बनाने के काबिल नहीं है, इस मुल्क अक्सरियत मुल मालिक की हालत यही है। रहबर कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, हमें ये जो लोकल इतनी हमारी ताकत है सारे मुल्कों में, पाकिस्तान भी ऐसा ही है, आपको अपने मुल्क की जो असल असासे हैं उसके ज़रिए से अपने मुल्क के अंदर ही अपनी एजुकेशन बेस्ड, यानी मुराद यह है कि आपको पता है हमारे यहाँ जब कोई चीज़ आती है उसको हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आती है, एजुकेशन नहीं आती है, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन नहीं आती है, एजुकेशन उनके पास होती है, हमारे पास बनी हुई चीज़ आती है। रहबर मौज़ूम फरमाते हैं कि वो दानिश, लफ्ज़ दानिश का है, दानिशगाह कहते हैं यूनिवर्सिटी को, यानी वो एजुकेशन खुद हमारी अपनी क्यों नहीं है, नेशनलाइज क्यों नहीं है, हम हमेशा डिपेंड क्यों करते हैं, हर चीज़ में डिपेंड करते रहेंगे क्या। तो कहा रहबर ने, ज़रफियत मौजूद, एजुकेशन मौजूद, आपके यहाँ के पढ़े लिखे लोग मौजूद, कहा इक्तिसादी लिहाज से ईरान का रुतबा जो यूरोप कहता है, यानी जो इनके जो ये लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं उसमें उन्होंने कहा कि 20वें नंबर पर है ईरान, इकतसाद में बढ़ती हुई ताकत 20वें नंबर पर है। दुनिया कहती है, रहबर मौज़म ने कहा नहीं, अगर हम थोड़ी सी करवट लें तो हम असल में 11वें नंबर पर हैं। ईरान इकतसादी लिहाज से दुनिया में 11वें नंबर पर आएगा, अभी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, वो हमें 20वें नंबर पर गिनते हैं। रहबर ने कहा खूब, अगर हम 20वें नंबर पर भी हों तब भी दुनिया के कितने मुल्क से बेहतर हो गया भाई, कितने मुल्क हैं दुनिया में 200 से 18 सही है, 219 उनकी तो आदत ख्वाहिश है कि 20वां 21वां 22वां बनता चला जाए, क्योंकि अफगानिस्तान को तोड़ें 5 मुल्क बनाएं, ईरान को तोड़ें 3-4 मुल्क बनाएं, तो 5 मुल्क ईरान को तोड़ के 3 मुल्क अफगानिस्तान को तोड़ के 3 मुल्क इराक को तोड़ के 2 मुल्क, इस वक्त पूरी कोशिश चल रही है शाम को तोड़ के 3 मुल्क, यमन को तोड़ के, तो वो तो चाह रहे हैं कि इतना जल्दी जल्दी 250 हो जाएं। लग रहा क्रिकेट चल रही है, उनको बस खेलना है जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है स्कोर बनाएं, धड़ाधड़ तोड़ रहे हैं ममालिक। हो 20वां भी नंबर है तो बहुत बड़ी बात है, 35 साल की पाबंदियों के बाद ईरान में 35 साल पाबंदियों के बाद चलें 20वें नंबर पर भी हैं। तो कहा जोग्राफी लिहाज से देखें आप, 15 ममालिक हमारे अतराफ में, 15 ममालिक ईरान के अतराफ में, कोई छोटी बात है, 37 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, अगर ये 15 ममालिक हमारे पड़ोस में जिसके अंदर आबादी लगाएं तो 37 करोड़ की बनती है, और ख़ुद ईरान के अंदर 8 करोड़ की बनती है। उन्होंने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम यूरोप की तरफ देखें, आप अपने ऊपर एतमाद करते हुए कोई एक ऐसी चीज़ बना लें, कोई टेक्नोलॉजी के एतबार से ज़रात में किसी में भी किसी फील्ड में लें, एटॉमिक में कोई ऐसी चीज़ बना लें कि जो जिसको बेचना या ख़रीदना पड़ोस में ही है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के पास इतना बड़ा बाजार हो, ख़रीदार हो, और वो सोचता रहा कि यूरोप से छरवाबित हो जाए, फलां से छरवाबित हो जाए, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। इसी तरह से कहा हमारा बाज़ार दाखिली ये हो गया। उसके बाद कहा कि एनर्जी के एतबार से देखें, हमारे पास जो एनर्जी है यानी अगर गैस और ऑयल मिलाया जाए तो ईरान पहले नंबर पर है, एनर्जी की बात कर रहा हूँ, हाँ अगर अलग अलग कर दें तो गैस में तीसरे नंबर पर आएगा, पेट्रोल को अलग से देखें तो चौथे नंबर पर आएगा दुनिया में, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस एनर्जी को अगर मिला दें गैस और पेट्रोल तो ईरान पहले नंबर पर है। रहबर मौज़म फरमा रहे हैं कि ये पहले नंबर पर, और अभी बहुत सारे इलाके खुदे भी नहीं हैं, अभी बहुत सारे जगहों से चीज़ें आना भी ज़रूरी है। रहबर ने यहाँ पर अपना एक तजुर्बा बताया, कहा कि हमारे साथ खुद हुआ है जब मैं सदर था कि मुझे कहा गया कि फलां चीज़ जो है ना वो यूरोप से लानी है। अच्छा, उससे पहले मैं क्योंकि अब घूम के आया था, अफ्रीका का एक मुल्क देख के आया था, मैंने कहा वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो तो अफ्रीका में मौजूद है, जाके अफ्रीका से ले लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये अफ्रीका से नहीं होगा, ठीक है आप सौदा देख लें, कर लें, तय कर लें, फलां हो जाए। कह लेंगे मैं अभी ये सब कुछ कर ही रहा था, थोड़े से बाद देखा कि नहीं वही चीज़ जो मैं अफ्रीका से बात कर रहा था वो यूरोप से आ रही है। और मैंने पूछा भाई ये सस्ती मिल रही थी, वहाँ के लोग भी आते थे, खुश भी हो रहे थे, थोड़े अरसे का क्रेडिट भी दे रहे थे, वहीं से उठाना था, यूरोप से क्यों उठा लिया। तो पता चला कि हम ये काम मुसलसल करते हैं, ईरान के अंदर ये काम मुसलसल हो रहा है। रहबर फरमा रहे हैं जब मैं सदर था ये हो रहा है, उसके बाद से आज तक ये हो रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपको इतनी भी इजाज़त नहीं है, आपसे कहा गया ओहो अफ्रीका से लाना बहुत मुश्किल है, उनके कवानीन बड़े सख्त हैं, ओहो जहाज़ बड़ा घुमाना पड़ता है, इस तरह की बातें कर करा के ये कभी भी आपको सस्ती चीज़ कहीं से नहीं उठाने देंगे। अभी आपके साथ ये हो रहा है, इस मुल्क के पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। अभी लतीफ़ा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ अपना, हमारे यहाँ की अपनी गंदम, पाकिस्तान की उठी हुई अपनी गंदम, वो इस वक्त ज़खीरा हुई हुई है बड़े बड़े जो उन्होंने स्टोर्स बनाए हुए, और इन्होंने पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए अभी किसी यूरोपीय मुल्क से गंदम मंगवाई है। किस तरह से? यूक्रेन से गंदम मंगवाई गई है। कहा जा रहा है कि उसको जानवर भी नहीं खाता था उनके यहाँ का, जो गंदम मंगवा के वो पाकिस्तानियों को खिला रहे हैं। कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग शऊर के साथ इन चीज़ों को देख रहे हैं, कितने लोग इस पर कयाम करने के लिए तैयार हैं? नहीं हो रहा। यानी हम बेसिस बड़े मसाइल हैं, हमारे बुनियादी इतने ख़तरनाक मसाइल हैं कि खुदा खैर करे, लेकिन बहरहाल बहुत जल्दी यानी 4-5 साल के अंदर अंदर हमें इन तमाम मौजूदात के ऊपर लीड करना है, इस तरह से आगे बढ़ें। जवानों समझें इस बात को, आपको और हमको गुमराह किया गया है कि आप सेल्फिश होकर अपने आप को देखें कि जो आपकी अभी एजुकेशन है वो आपको किस काबिल थोड़े अरसे में बना देगी कि जिसके बाद आप अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे किसी मल्टी नेशनल के अंदर। मल्टी नेशनल का इशू हमारी, यानी हम अपनी सलाहियतों को मुसलसल दूसरी बाहर से आई हुई ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं और फख्र कर रहे होते हैं कि हमारी जॉब आज फलां में हो गई है, आज हम फलां फर्म के लिए काम कर रहे हैं, आज हम फलां ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं, हमारा ग्रुप दुनिया में 8वें नंबर पर है, फलां ग्रुप 3रे नंबर पर है। यानी हमारी हालत बहुत ही ख़राब हुई हुई है इस वक्त, हम बहुत 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 ही नीचे जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए था इतना हमें। बहरहाल तो मल्टीनेशनल हम क्या कर रहे हैं, हमें जवानों को समझाना है इस बात को कि भाई आप पर डिपेंड कर रहे हैं, रहबर मौजूम की शख्सियत ईरान के अंदर जवानों पर डिपेंड कर रही है, इसलिए उन्होंने ये सारी बातें जो आज इन मसूलिन के साथ कर रहे हैं इसमें बेशतर बातें पहले वो जवानों की महफिल में कर चुके हैं। रहबर ने कहा कि इक़्तसाद मुक़ावमती को मैंने तकरीबन 10 जगहों पर पहले, कितनी जगहों पर पहले समझाया है, यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ, असातज़ा से मुलाकात की, यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि भाई अपने पाँव पर खड़े होने की बात करो, खुद ब खुद ये सारी ताकतें तुम्हारे पाँव पर आके झुकेंगी अगर तुम अंदर से मजबूत हुए। तो बहरहाल हमें भी पाकिस्तान को इस तरह से देखना है, देखें छोटे छोटे विजन नहीं, हम इसलिए हो रहे हैं जाफर तैयार मजबूत हो जाए, हम इसलिए हो रहे हैं ISO मजबूत हो जाए, ये छोटे छोटे विजन्स हैं, इस पर इस तरह से नहीं। यानी आप लोगों से इस तरह की उम्मीद नहीं है, जो रहबर मौजूम जैसी शख्सियत को, आलम की, आलम इस्लाम की सबसे बड़ी शख्सियत है, आलम इस्लाम छोड़ दें, जो चैलेंज किया वो बड़ा ज़बरदस्त चैलेंज है, जवादी आमली ने भी किया, आयतुल्ला मिश्किनी भी कर चुके थे चैलेंज, उन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज किया था कि अगर ऐसी कोई शख्सियत आलम इस्लाम के बाहर, रहबर मौजूम जैसी शख्सियत आलम इस्लाम के बाहर भी हो, तुम्हारे पास यूरोप में भी हो, किसी जगह पर इससे बेहतर शख्सियत हो, तो हम कंजूस नहीं हैं, हमें आगे बताना कि इतना मुदब्बिर आदमी, इतना शुजा आदमी, इतना आलिम आदमी, इतना बातकवा आदमी, जो सिफात रहबर मौजूम है, अगर ऐसा तुम्हारे पास है लेकर आओ, और फिर हम उसकी अतात ना करें तो हमसे कहना, अगर हम उसकी अतात ना करें, इतना सियासी फहम रखने वाला आदमी, जुरत के साथ फैसला करने वाला आदमी, पूरी दुनिया को अपनी नोक पर रखने वाला आदमी, जूते की नोक पर रखा हुआ है अमरीका जैसी ताकत को, अंदर मुनाफिकीन मौजूद हैं ईरान के अंदर, लेकिन रहबर ने आप देखें किस तरह से बिहेव करते हैं, रहबर किस तरह से लेके चलते हैं वाले को, हैसियत नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं देते, प्रोपेगेंडा करते रहे, वो चाहते हैं रहबर इन्वॉल्व, छोटे छोटे नहीं होते, अपना नज़रिया पुख्ता पेश करते हैं जवानों के दरमियान किसी घबराहट के बगैर। तो ऐसी क़्यादत के मानने वाले ऐसा ना हो छोटे छोटे विजन्स पर ज़िंदगी गुजार रहे हो आप तमाम दोस्त, ऊँचा सोचें, बड़ा सोचें, गहरा सोचें, दूर तक सोचें, इंशाल्लाह सिर्फ अपने ज़ात के लिए नहीं आपने करना, पूरे पाकिस्तान के लिए, इंशाल्लाह पूरे आलम इस्लाम के लिए इस तरह से अपने आप को पालें। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आगे रहबर मौज़म एटॉमिक एनर्जी के इशू पे 5+1, कहते हैं यकीस चालिश हा, यह इबारत अच्छी है सुने इसको, यकीस चालिश हा इनस के कसी तसव्वुर खुनत के माँ अगर अज मयान मबानी एतकादी खुद। कहते हैं हमारे यहाँ एक और जो बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हम अपनी मबानी एतकादी यानी जो बुनियादे बेसिस हैं अपने एतकाद की, अगर हम उससे पीछे आ जाएँ, मबानी एतकादी निज़ाम जमहूरी इस्लामी यानी जो इस इनकलाब के, इस निज़ाम जमहूरी इस्लामी के जो मबानी हैं, जो बुनियादें, अगर हम इस एतकाद को छोड़ दें, इनसे हम पीछे आ जाएं, तो फिर हम पर जितने भी दरवाज़े बंद हैं सब खोल दिए जाएंगे। कुछ लोग तसव्वुर करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं, अपने एतकाद में इतने सख्त ना हो, तो फिर दुनिया हमारे लिए दरवाज़े खोल देगी। कहते हैं इन खताए बिस्यार बुज़ुर्ग व असासी अस्त, ये बड़ी बुनियादी और बहुत बड़ी गलती है फिक्र की अगर कोई इस तरह से सोचता है। लेकिन मैं नहीं कहता कुछ, हमारे जो दोस्त इस वक्त मुज़ाकरात के लिए हैं, जो लोग गवर्नमेंट में इस तरह से सोचते हैं, वो हमारे अच्छे लोग हैं, एतकादी लोग हैं, दीनदार लोग हैं, बातकवा लोग हैं, लेकिन चलें इस तरह की फ़िक्र रखते हैं, हमें अफसोस है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि इस तरह की फ़िक्र हमारे पड़ोस में बहुत सारे ममालिक के पास थी कि जिनको बाद में अमेरिका ने तबाह कर दिया। आप मुझे बताएं ना, इस अमेरिका की खिदमत में जितना इराक था, जितना तुर्की है, जितना सऊदी अरब है, अतात में ना पूरी पूरी, ये तो सब वहीं से, इक्तसाद नहीं भाई, ये सियासत भी वहीं से लेते हैं, ऑर्डर मिलता है ना, पूरी तरह से अपने आप को हवाले किया हुआ है। इनकी क्या हालत है, इन ममालिक की क्या हालत है, इनकी क्या वैल्यू है इस वक्त, उसमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। क्या हैसियत है उस वक्त? आप याद है अभी ये इशू हुआ यमन वाला, आपकी फ़ौज नहीं गई तो चले सऊदीया ने आपको बुरा कहा, वो तो आपका माई बाप है, कि उसने आपको कहा कि तुम होते कौन है मना करने वाले। लेकिन जो जुमला अरब इमारात ने कहा ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था। उन्होंने कहा तुम्हें सज़ा मिलेगी इस काम की। बाप क्या नहीं, अजीब सी हमारी जो है ना वो कैफियत हो गई कि उसकी हैसियत देखें आप, ये दुबई, ये शारजा, ये अबू ज़हबी, आप इनकी हैसियत देखें इन ममालिक की, कि ये पाकिस्तान जैसे ताकत को धमकी दें कि तुम अब देखोगे भुगतना पड़ेगा तुम्हें, सज़ा मिलेगी तुम्हें कि तुमने फ़ौज नहीं भेजी। यानी हमारी ये हालत है। अब हमसे ज़्यादा कौन कौन नौकर था अमेरिका का, इन ममालिक से ज़्यादा नौकर कौन है? लेकिन इनकी हालत देखें, क्या हाल किया इराक़ का, सद्दाम के ज़माने में हो गया था जब उसने हमला किया था कुवैत पे, ना ये कि अभी उसी वक्त अफगानिस्तान का क्या हाल किया इन्होंने, अफगानिस्तान तो प्लेट में रख के मिला इनको, क्या हाल हो रहा है अफगानिस्तान का, क्या कर रहे हैं ये दुनिया के साथ, लीबिया के साथ क्या किया इन्होंने, यानी जो जितना नौकर और ग़ुलाम था, मिस्र में क्या हो रहा है इस वक्त, जो जितना नौकर और ग़ुलाम है वो समझ रहा है कि वो हालत अच्छी होगी बेहतर, रहबर कह रहे हैं ये गलत है फिक्र, आपकी हालत से उस वक्त बेहतर होगी कि जब आप अपने फैसले अपने हाथ में लें। ईरान का सबसे बड़ा मसला ये है, वो कहता है हमारे हाथ में हमारे फैसले हैं, अपने पाँव पर खड़े होंगे, चाहे बहुत लेट खड़ा होना पड़े, बहुत देर से खड़े होंगे, लेकिन होंगे अपने पाँव पर, तुम्हारे मोहताज नहीं है। असल मसला ये, असल जंग ये, असल दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी इकतसाद मुकावमती का एक जुमला बहुत ज़बरदस्त रहबर ने कहा, अभी हमारे यहाँ तो नापैद होता जा रहा है भी नहीं वैसे पाकिस्तान की अपनी कोई मसनूआत। रहबर मौज़म ने कहा कि अपनी जान छुड़ा लें इस फिक्र और इस सोच से कि जो चीज़ बाहर की होगी ना वही हमारे लिए अच्छी है, और जाके हम तलाश करते हैं कि मेड इन अमेरिका लिखा है, मेड इन जापान लिखा है, मेड इन जर्मनी लिखा है, मेड इन फ्रांस लिखा है। रहबर मौज़म समझाना चाह रहे हैं कि जो ब्रांड है ना, ब्रांड लव इस्तेमाल किया रहबर ने इस तकरीबन चार पहले, रहबर ने कहा कि इस ब्रांड और इस नज़रिया ब्रांड से जान छुड़ा लें, ये कहीं नहीं, कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। वही मामूली चीज़ें होती हैं जो सब बेच रहे होते हैं, लेकिन इन पर लेबल लगा के ये आपको कई गुना महंगी बेच रहे होते हैं और आप ख़रीद रहे होते हैं। रॉबर्ट ने कहा कि अगर हम दाखिली सतह पे जो कुछ हम खुद बना रहे हैं, हाँ उसकी कैफियत अभी नीचे है, लेकिन उसकी कैफियत को मजबूत करने पर गवर्नमेंट तवज्जो दे, और उसके इस्तेमाल करने पर उलमा, अहले मिंबर, अहले मजलिस, ये सब बात करें, बाकायदा इसे मौजू बनाएं। बहरहाल रहबर ईरान के एतबार से बात कर रहे हैं कि हमारा इक्तिसाद अपने पाँव पर उस वक्त खड़ा हो सकता है कि जब हमारी कौम ये तय कर ले कि उसने मेड इन ईरान ही को इस्तेमाल करना है। अगर ये तय कर ले मेड इन ईरान, और इसके लिए भारत बड़ी तबलीगात की ज़रूरत है, तो आप देखेंगे कि यही होगा। खूब मुज़ाकरात, रहबर मौज़ूम फरमाते हैं कि मुज़ाकरात किस तरह शुरू हुए, कई तारीख बयान करना बहुत ज़रूरी है। कहा कि बात है इस गवर्नमेंट की नहीं जो रूहानी की है, इससे पहले वाली गवर्नमेंट है कि जो अहमद नजात की है, उसका दूसरे ज़माने का आगाज़ हुआ था। कहा कि इस इलाके के ममालिक में से एक बड़ा मोहतरम आदमी, रहबर ने नाम नहीं लिया उसका, कौन है हमें समझ में नहीं आया कि कौन वास्ता बनकर आया, आया तुर्की का वज़ीर आज़म आया, आया यमन का तो इम्कान नहीं था, ओमान का काफ़ी इम्कान है, यानी जो काबूस सुल्तान काबूस उसका कभी इम्कान है, लेकिन बहरहाल रहबर ने नाम नहीं लिया। तो कहा रहबर ने कि इस इलाके का एक बहुत मोतबर आदमी वो हमारे पास आया, उसने हमें खुफिया पैगाम दिया, मुझे खुफिया पैगाम दिया अमरीका का, कि अमरीका कहता है कि बहुत हो गया हमारी आपस की लड़ाई, अब हम चाहते हैं कि जो आप पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो भी ख़त्म होनी चाहिए, और जो हमारे दरमियान जंग चल रही है इसको भी कंट्रोल करें। हमने कहा कि हमें अमरीका पर एतमाद नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इस दफ़ा अमरीका का पैगाम मुख्तलिफ है, वो आप पर कोई शराइत थोपेगा नहीं कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। हम चाहते हैं कि बस बग़ैर किसी शर्त के बहुत जल्दी आपके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और इस सर जंग को ख़त्म करें, और हम कहीं भी किसी जगह पर आपस में मुकाबले पे ना आएं। रहबर ने कहा कि मैंने उस शख्सियत के एहतराम में इस बात को मतरह किया पहले अपने यहाँ, फिर कुछ लोगों को देखा कि उनकी ख्वाहिश भी यही है। रहबर कहना नहीं चाह रहे, ये बात, लेकिन ये कहीं छुपी हुई है कि यानी बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि जिनकी यानी ईरान के अंदर कि जिनको पहले से आमादा किया हुआ था कि इस तरह के जब पैगाम आए तो आप कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठना चाहिए, टेबल पर आ जाना चाहिए, कब तक जंग करते रहेंगे कब। और ये हुआ, जैसे ये पैगाम अंदर से बाहर आया बहुत सारे लोग कहने लगे कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और वो लोग उसमें उलमा भी शामिल हैं, उसमें गुज़श्ता सुदूर भी शामिल हैं, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं कि जिन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कि मुझे यकीन था कि इससे हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे इस मुज़ाकरात से, उनके लिए हमारे लिए दोनों के लिहाज से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मैंने इसको अपनी कौम के लिए बड़ा मुफीद समझा, इस तजुर्बे को, कि ये तजुर्बा कर लेते हैं। मैं जो कहता हूँ कि हम एतमाद नहीं करते, इसमें हमारे तजुर्बात हैं लेकिन आपके नहीं है, नई नस्ल के। नई नस्ल समझती है कि जैसे मुज़ाकरात होंगे तो बेहतर हो जाएंगे ईरान के हालात। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने इसको कबूल किया। फिर कहा कि अमरीका ने अकेले नहीं इसको कबूल किया, कहा कि 5+1, बल्कि 5+1 से भी आगाज़ नहीं हुआ। आपको पता है UNO पहले कहा कि आपसे पूरी दुनिया आपसे नाराज़ है। अच्छा, जब UNO में पता चला कि बात हमारी पहुंची तो अक्सरियत ने हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा अच्छा, असल मसला सलामती कौंसिल वाले आपसे, यानी सिक्योरिटी कौंसिल आपसे नाराज़ है। अच्छा, सिक्योरिटी कौंसिल बात पहुंची, पता चला नहीं वहाँ पर भी बहुत सारे मुल्क हामी निकाला ईरान के। फिर कहा नहीं, असल मसला वेटो पावर्स जो है ना, वेटो पावर्स वो आपसे नाराज़ हैं, और लेकिन उसमें एक जर्मनी अलग से प्लस कर लेते हैं। तो 5+1 5 वीटो पावर, 6 यानी +1 जर्मनी। उन्होंने कहा इसमें शामिल कर लेते हैं। 6 मुल्कों से हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुज़ाकरात का शुरू हुए काफ़ी अरसा हो गया है, ताज़ी बात नहीं है, काफ़ी अरसा हो गया। ओपन हुए हुए कम, यानी ओपन हुए टाइम कम हुआ है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खूब का आगाज़ हमारा अच्छा था, मुज़ाकरात में बुरा नहीं था। रैबर कह रहे हैं, मैं उन रोज़ी के वारे दिन मुज़ाकरात शुदीम, जिस दिन हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, बहुत कुछ हासिल किया, का काबिल कबूल चीज़ें हमें मिली, हमें खुशी हुई, कोई मसला नहीं। मसलन क्या था? मसलन ये था कि पहले दुनिया आपको एक एटॉमिक पावर मानने के लिए तैयार नहीं थी। पहले दुनिया कहती थी ईरान है ही नहीं एटमी ताकत, अब आपने हमें शामिल कर लिया एटमी ममालिक में, यहां से आगाज हुआ। इससे हौसला मिला हमारे मुज़ाकरात करने वालों को भी और आवाम को भी, कि पहले तो ये आपको एटमिक पावर ही नहीं मानते थे, अब इन्होंने मान लिया। बहस इस बात पे नहीं कर रहे कि आप एटमी ताकत हैं या नहीं, अब बहस इस बात पर कर रहे हैं कि आप जो इनरिच कर रहे हैं बैठ के, यूरेनियम के जो अफजूदगी का अमल है उसको इनरिच करने का अमल है, अब इस पर बहस शुरू हुई कि ये कितने फीसद होना चाहिए। ये उसी वक्त होती है ना कि जब आपको एटॉमिक पावर मान लिया, तो ना माना होता तो वो कहते भाई आपको तो हक ही नहीं है, ख़त्म करें। ख़त्म नहीं करें, कहाँ चलें। मुज़ाकरात में हमारा दाखिला बड़ा अच्छा था, बुरा नहीं था, अच्छे अंदाज में दाखिल हुए। और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सख्तियाँ शुरू की, यानी पहले एक ऐसा माहौल बनाया कि जैसे हमें तस्लीम कर लिया गया, बहुत सारी शराइत भी हमारी मानेंगे का नहीं। फिर ऐसा ऐसा माहौल बनाना शुरू किया, उसमें क्या क्या किया, कहा कि आपने इस एनरिच को जो 2% होना चाहिए, अगर एटॉमिक एनर्जी भी है, 20% तक आप क्यों गए? अगर ये 20 से ऊपर निकले, वैसे तो 20% अगर किसी मुल्क के अंदर यूरेनियम को एनरिच कर लें तो वो खुद किसी आइटम बम से कम नहीं होता, याद रखिएगा बात, वो खुद किसी आइटम बम से कम नहीं होता, वो खुद एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। तो उन्होंने कहा ये बहुत गलत हो गया, आप दोबारा से 2% पर आएं। पहली बात उन्होंने ये कर दी, आपने सेंट्रीफ्यूजेस जो बनाए ये आपने बहुत ज़्यादा बना लिए, इसकी क्या ज़रूरत थी आपको, ये सब या डिफ्यूज़ कर दें या ये सारा का सारा किसी मुल्क को दे दें। दूसरी बात कर दी उन्होंने, आपने तहकीकाती मराकज़ बहुत बना दिए, एक आध दो चार जगहों पर बैठते तो ठीक था, आपने तो वह नथन अलग बना हुआ है इस्फहान में, फिरदो अलग बना हुआ है, अराक का अलग चल रहा है, अभी नए और हो सकता है खुफिया भी बनाए हुए हों, इन सब को ऐसा ऐसा ख़त्म करके तहकीकाती मरकज़ बना दीजिए, यानी इसमें प्रैक्टिकल कोई काम ना हो रहा हो, रिसर्च वर्क हो रहा हो, किताबें पढ़ी जाएं, ख़त्म कर दें इसके अंदर से प्रैक्टिकल्स। ड्राइवर कह रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नहीं माना हमने, हम नहीं मानते, हमारी मुज़ाकरात की टीम से भी हमारी ये ख्वाहिश है। 35 साल में जो हमने तरक्की कर ली है, किसी एक मरहले में भी पीछे नहीं आएंगे। 20% है रहेगी, हजारों में बनाए सेंट्रीफ्यूजेस रहेंगे, भारी पानी का एक रिएक्टर लगा हुआ है अराक में, लगा रहेगा। फर्दू नामी इलाका, नतंज नामी हमारा जो इदारा चल रहा है, वो चलते रहेंगे। यानी अब रेड लाइन खींच दी गई। पहले हम आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात में कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा 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 उनकी बातें माने। रहबर मौज़म ने सब के आगे रेड लाइंस बना दी कि अब हमें इन मौजूदात में पीछे नहीं जाना। इत्मीनान, अब आपको भी इत्मीनान होना चाहिए, इन मौजूदात में हमें पीछे नहीं जाना। कहा वो रुके नहीं, इन्हीं मुतालबात पर रुके रहते तो ठीक था। आहिस्ता आहिस्ता आगे कहने लगे कि आपके यहाँ और भी मसाइल हैं, पाबंदियाँ आपके ऊपर सिर्फ इस बुनियाद पर तो नहीं लगी हुई कि आप एक एटमिक पावर बन रहे हैं, और भी बहुत सारी वजूहत हैं। अच्छा भाई, वो क्या है? पहला, हुकूक बशर का मसला है आपके मुल्क में, ठीक है। और क्या है? कहा कि दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहे हैं आप पूरी दुनिया में, ईरान दहशतगर्दी की सपोर्ट कर रहा है। कहा ठीक है, और क्या है? कहा कि यमन में, यानी यमन का नाम नहीं लिया, पड़ोसी ममालिक के अंदर आपकी मदाखलत है, आप इनको रोकें, इन मदाखलतों को रोकें। लेबर ने कहा कि अगर हम एटॉमिक वाले मौजूदात पर इनकी बहुत सारी बातों को मान भी लें ना, तो आप क्या समझ रहे हैं एक दिन के अंदर सारी पाबंदियों ख़त्म कर देंगे? नहीं, ये नए नए मौजूदात खड़े करेंगे, और वो नए नए मौजूदात खड़े होना शुरू हो गए। क्यों? अब जो उन्होंने मुतालबा किया है वो बड़ा कमाल है, दो मुतालबात बड़े कमाल कर दिए। उन्होंने कहा आपको अपनी सारी छावनियाँ जहाँ आपका असलहा बनता है, जहाँ आपका असलहा ज़खीरा होता है, रखा जाता है, हमें इजाज़त दें, हम सब की इंस्पेक्शन करेंगे। वाह, एटॉमिक से शुरू हुए थे, हुकूक इंसानी पर पहुंच गया, दहशतगर्दी का मसाइल छोड़ दिया, और अब आ गए कि आपके जो असलहे बनाने की जगह हैं वो भी सब आप हमारे हवाले, यानी हम जब चाहें देख लें। एक ये मुतालबा बड़ा ज़बरदस्त किया आपने, दूसरा आपने कहा कि जितने आपके साइंसदान हैं, बल्कि लिस्ट दी एक 22 आदमियों की, कि हमें इन 22 आदमियों से, उन्होंने कहा कि हमें इनसे इंटरव्यू करना है। लफ्ज़ इंटरव्यू मशहूर हुआ है, बात ये नहीं, इंट्रोगेशन है, यानी हम इनको चाहते हैं कि किसी जगह लेके जाएं और इनसे उगलवाएं कि ईरान की तरक्की क्या है। 22 मालिक के 22 शख्सियात के नाम दे दिए। मुज़ाकरात, ये हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं 5+1 से। दुरूद पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़बरदस्त, पूरी वैसे एक एक बात, एक एक लाइन इतनी ज़बरदस्त है, इतनी मज़ेदार है कि एक एक लाइन को पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है इसलिए हम इनको पढ़ने का। अब हमारी शराइत वो ये है कि सारी पाबंदियाँ, तीन बेसिस बनाई हैं तुमने पाबंदियों की, एक बेसिस तो आपको समझ में आई गई, और फिर तीन इदारे जो पाबंदियाँ लगाए बैठे हैं, कहते हैं एक खुद गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका है जिसकी पाबंदियाँ हैं, एक अक्वाय मुत्तहदा की पाबंदियाँ हैं, और एक यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ, और तीनों की अलग अलग बेसिस हैं, फला इस बुनियाद पर, फला इस बुनियाद पर, फला इस बुनियाद पर। रॉबर्ट ने कहा कि सारी पाबंदियाँ एक ही दफ़ा में ख़त्म होंगी। ये नहीं होगा कि अभी आपने क्योंकि 20% से 2% वाली बात कबूल कर ली है तो हम आपको 10 साल आजमाएंगे। रॉबर्ट ने जुमला कहा है 10 साल आजमाने के बाद आपको देखेंगे कि आया वाकई आप अपनी पाबंदियों पर, जो आपने, यानी हमने जो आपसे मुतालबात मनवा ली हैं, वाकई आप उस पर संजीदा हैं। जब हम देखेंगे आप संजीदा हैं तो फिर हम एक पाबंदी हटा लेंगे। रॉबर्ट ने कहा ये नहीं होने वाला, जिस दिन किसी भी मौजू पर इन रेड लाइंस के साथ जो हमने बयान किए हैं अगर सिग्नेचर्स हो गए तो कहा कि सारी पाबंदियां हमें एक ही दफा में ख़त्म करनी है, किसी ने भी लगाई हो। और उसमें खोला मौजुआ, थोड़ा मौजू को खोला कि चाहे उसमें इकनॉमी यानी मुराद ये है कि हमारी तिजारत पर पाबंदी हो, चाहे वो LCs यानी बैंक के ऊपर जो तुमने पाबंदियाँ लगाई हैं वो वाली हो, या जो हमारे असासे मुंजमद किए हैं तुमने मुख्तलिफ ममालिक में, ईरान का अपना बिजनेस चल रहा था, एज ए गवर्नमेंट बिजनेस चल रहा था, वो सारे बैंकों में सारे असासे मुंजमद कर दिए। कहा कि चाहे वो तुमने पाबंदी लगा के बैंकों में हमारे असासे को रोका हो, हमारे अगर कहीं किसी जगह इन लाइनों के साथ जो रहबर ने खींची हैं अगर फिर भी मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, तो रहबर ने कहा कि सारी पाबंदियां एक ही दफ़ा में ख़त्म करनी हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की कोई बात अमेरिका सोच भी सके। अमेरिका टाइम ले रहा है, अंदर उसको इम्कान हुआ हुआ है कि कोई निफाक है जो ईरान के अंदर पल रहा है, ईरान के अंदर कोई निफाक है जो पल रहा है, उसको हम पाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लालच दे दे के उस निफाक की तकवीत करें, लालच दे दे के ये एहसास दिला दिला के कि अभी सब कुछ ख़त्म होने वाला है, अभी ईरान यूरोप बन जाएगा, अभी इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म होते ही हर चीज़ आपकी दुनिया, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, आप बहुत माली तरक्की करेंगे, इक़्तिसादी तरक्की करेंगे, आपका पासपोर्ट बड़ा मोतबर हो जाएगा, ये सारी बातें जो रहबर मौज़ूम करते रहे मुख्तलिफ तकरीर में, यहाँ नहीं किए। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अमरीका टाइम ले रहा है, इस तरह का टाइम के अंदर से जो निफाक है वो ज़रा मज़बूत हो, क्योंकि ये तो पता चल गया कि 35 साल जब हमने पाबंदी लगा के रखी तो ईरान को हम कमज़ोर नहीं कर सके, ये बात वाज़ह है आप पर, 35 साल ईरान की किसी एक चीज़ को रोक सके, किसी एक मौजू को रोक सके, ईरान के अंदर नौजवान तैयार ना हो, वो तो हो रहे हैं, ईरान के अंदर इनकलाबी तकवीत ना पाएँ, वो तो हो रहा है, मदारस मजबूत वो तो हो रहे हैं, सियासी सिस्टम कमज़ोर हो जाए नहीं हुआ, सियासी सिस्टम तो मजबूत हो रहा है, फौज अवामी फौजें ना बने, सिपाही पासदारान बसीज वो तो बन रही हैं, अच्छा चलो हो गया, अंदर बाहर कम से कम आपके नजरियात ना निकलें, भाई वो तो निकल गए। अब आप खुद ही कह रहे हो ईरान यमन में ईरान सपोर्ट कर रहा है, शाम में ईरान सपोर्ट कर रहा है, इराक में ईरान सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान के पीछे अमरीका का ईरान का हाथ है, पता चला है वो आखिरी लतीफ़ा से ये नहीं, आखिरी लतीफ़ा इससे भी अच्छा है, आखिरी लतीफ़ा यह है कि अमरीका की एक तहकीकती इदारे ने यह बात साबित कर दी है कि दाइश को बनाने वाला ईरान है, क्या कमाल इदारे हैं, देखें ना ईरान कितना इंटेलेक्चुअल, तहकीकती इदारे अमरीका में पाए जाते हैं जो आपको भी नहीं मालूम, कि उन्होंने साबित कर दिया कि दाइश को बनाने वाला ईरान है, पहले कह रहे थे तालिबान के पीछे ईरान है, ये बात तो चल रही थी काफ़ी अरसे से, अभी का दाइश को बनाने वाला ईरान है, कमाल है, यानी कमाल। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयद हसन नसरुल्लाह का एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त था, ईरान ये जो जैसे मैंने कहा ना अभी ईरान हर एक के पीछे ईरान है, होता ही था कि जो भी मुसीबत इसराइल पर आती थी, जो भी मुसीबत अमेरिका पे आती थी, जैसे काले क़याम कर गए, कालों का क़याम पता है आपको, अफ्रीकी बनाए हुए अपने नौकर और ग़ुलाम के तौर पर लाए 300 साल पहले, और अभी तक उनको दूसरे नंबर का ही दर्जा दिया हुआ है, दूसरे दर्जे के लोग हैं ना, पहले नंबर के गोरे के बराबर तो नहीं है, बहरहाल उनका क़याम था, इसी तरह फ़लस्तीनी हमास का क़याम था, इसी तरह से अंदर भी कुछ हुआ था, इसराइल के अंदर कुछ हुआ था, बहरहाल 8-10-12 बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे हुए थे हसन नसरुल्लाह पे, ख़िताब को उनका 3 साल या 2 साल या 2.5 साल 3 साल पुराना ख़िताब है, तो वो कहने लगे कि भाई इल्ज़ाम की भरमार की हुई है तुमने, चलो अब की हुई है तो मैं कबूल कर लेता हूँ, उन्होंने कहा मैं कबूल कर लेता हूँ शाम के क़याम में मेरा हाथ है, हमारा हाथ है, हिज़्बुल्लाह का हाथ है, हम कबूल कर लेते हैं कि इसराइल को जो फलां फलां मसला हुआ उसमें हमारा हाथ है, हमास को बनाने में हमारा हाथ है, शाम के मसले में हमारा हाथ है, और पता नहीं अफ्रीका में फलां जो तहरीक चल रही है उसके पीछे हमारा हाथ है, उन्होंने कहा मैं सारी बात तुम्हारी कबूल कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये कबूल नहीं करूँगा तुमको जो सुनामी लेकर आई, अभी हसन नसरुल्लाह लेकर आया, यानी उस वक्त उन्होंने जज्बात में बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने कहा ये मैं कबूल नहीं करूँगा तुमको जो सुनामी आया ये भी हसन नसरुल्लाह लेकर आया, भाई हसन नसरुल्लाह सुनामी लेकर नहीं आया, बिल्कुल मसला भी यही है, बिल्कुल मसला यही है, दुनिया में कहीं किसी जगह पे तहरीक उठे और वो थोड़ी सी अमरीका मुखालिफ हो, ये अब इस कौम यानी कौमों को काबिलियत ही नहीं समझते, यानी इस कौम इनको यकीनी नहीं है कि यमन की अपनी कौम भी इतनी काबिल हो सकती है, इन्हें यकीनी नहीं है कि मिस्र में, त्यूनस में, अलजायर में, शाम में, फ़लस्तीन में, लेबनान में, हर जगह जो तहरीकें उठी हुई हैं, इराक में, ये यानी ये इस कौम को काबिल नहीं समझते कि ये उनकी अपनी तहरीकें हैं, ये उनकी अपनी प्लानिंग है, ये उनके अपने दिमाग हैं, ये उनके नज़रियात हैं, बाबा ईरान, हाँ ठीक है ईरान एक बैकअप है, लेकिन वो एक नज़रियाती बैकअप है। सबको मालूम है बाबा ईरान के पास कोई ऑयल का पैसा है, ईरान के पास कोई हीरोइन का पैसा है कि वो इन इस्लामी तंजीमों को या गैर इस्लामी तंजीमों को या ये जो जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त उनकी सपोर्ट में पैसा देते रहेंगे और असलाह देते रहेंगे। उनका अपना मुल्क चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से वैसे भी मुश्किलात हैं, रहबर की बात ना मानने की वजह से ज़्यादा हैं। मैंने हमें यकीन है कि ईरान की बड़े मसाइल, इनका बड़ी मुश्किलात अमरीका और यूरोप की पाबंदियाँ या यूएनओ की पाबंदियों की बुनियाद पर नहीं है, रहबर की बात ना मानने की वजह से। अगर रहबर मौज़म की बात को मानते सवाल ही पैदा नहीं होता, इमाम खुमैनी के नज़रियात को मानते रहते सवाल ही पैदा नहीं होता। परेशान ना हो, ईरान सारे हिज़्बुल्लाह नहीं है, ईरान सारे इनकलाबी नहीं है, ईरान में सिर्फ एक ही फ़िक्र नहीं है, सब खामने खुमैनी के पीछे चलने वाले लोग नहीं हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आपको अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो कहते हैं अभी भी हमारी राय और रहबर की राय में फ़र्क हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं अभी वहाँ पर उस मुल्क के अंदर भी, उन सबको भी लेके चलना है, लेके चलना है, छोड़ा नहीं जा सकता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तकरीबन बातों का खुलासा हो गया है, कोई ऐसा अहम मसला भी सामने नहीं आ रहा कि जिसके हम बयान जिसके बारे में बात करें। फिर रैबर बारल इतना लंबा हो गया एटॉमिक इशू कि नहीं पहुंच पाए, यानी रहबर मौज़म की बात जो है वो हालात पर नहीं पहुंच पाई, मौजूद इतने ज़्यादा इसी में हो गए थे। लेकिन खुदा का शुक्र है, जो बात अब आपके लिए क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि ठीक है मुज़ाकरात की टीम भी हमारी है, रहबर मौज़म ने इनकी बड़ी तायद की, इनकी बड़ी तारीफ़ें की, इनको मुतदय्यन कहा, इनको काबिल एतमाद कहा, इनको बातकवा कहा, इनको मुश्किलात का शिकार कहा कि वाकई मुज़ाकरात करना इतना आसान नहीं है, इतना टफ़ है इस दुनिया और ये भी दुनिया के सबसे बड़े 6 मुल्कों के साथ बैठ के किसी चीज़ को मेज़ पर मनवा लेना बहुत मुश्किल काम है। तो रहबर मौज़म ने सारी बातें करते हुए कहा कि हम ये भी महसूस करते हैं कि आपको कमज़ोरी भी है, आप कमज़ोर भी हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी तक महसूस नहीं कर रहे कि आवाम आपके पीछे है, रहबरियत आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, हौसले के साथ, एतमाद के साथ। यानी कमज़ोरों के मुज़ाकरात ना करें, कभी भी कमज़ोर लोग अगर एक तरफ हों और मजबूत लोग एक तरफ हों तो ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होते। जब आप आगाज़ ही यहाँ से कर देंगे भाई हम तो बड़ी मुश्किलात में, आप बताओ क्या करना है, तो सामने वाला कहेगा मैं बताता हूँ क्या करना है, तुम थोड़ी बताओगे क्या करना है। तो बात यह है कि रहबर मौज़म ये चाहते हैं अपने मुज़ाकरात की टीम से इनका भी एतमाद रहे, इनका भी साथ दिया जाए, लेकिन ये ईरान का जो असल हक है, ईरान का जो वक़ार है, ईरान जिस वक्त जो मंजिलत है उसका भी ख्याल रखा जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुज़ाकरात किसी भी सतह पे चले जाएं, कोई बहुत बड़ा नतीजा नहीं निकलने वाला। भाई के जून की 30 तारीख आखिरी तारीख थी कि जिस पर कोई ना कोई बात सामने आ जानी है, लेकिन अभी वहीं बहस शुरू हो गई है कि इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, मुज़ाकरात की जो डेट थी, तारीखें थी, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, अभी हमें और सोचने और समझने की ज़रूरत है। रहबर मौज़म के इस बयान के बाद तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका को फिर दोबारा इतना ही टाइम चाहिए कि जितना उसने एक माहौल बना लिया था उस माहौल को ख़त्म करने के लिए फिर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, हमारे पास ऐसे कायद और ऐसी शख्सियात और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमा मौजूद हैं कि जो अमेरिका की कई कई दिनों की प्लानिंग्स या बल्कि कहिए कई कई महीनों की प्लानिंग और आसान करें कई कई सालों की प्लानिंग करने के बाद ये वारद, ये कंडोलिज़ा राइस का अपना जुमला है कि हम प्लान करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम ब्रेन्स जमा करते हैं, हम चारों तरफ से घिरने की बात करते हैं और फिर आने के बाद बहुत ही अच्छा प्लान ला के सामने बैठते हैं कि अब किस तरह से लेके चलना है। कहा कि वो एक खिताब करते हैं, इशारा किया अली खामनाई रहबर की तरफ, कहा वो एक खिताब करते हैं और हमारी सारी प्लानिंग पे पानी फेर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये वो बात थी जो रहबर ने शुरू में कही कि अगर तकवा इख्तियार करें तो अल्लाह आपके सामने रास्ते खोलता है। बात यही है भाई, तकवा जो है वो रास्ते खोलता है। हमारी बहुत अच्छा पढ़ना, हमारा बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा समझना इतनी सपोर्ट नहीं करता ये चीज़ें। बात यह है कि होना चाहिए, पढ़ाई भी है, लेकिन बात यह है कि तकवा साथ साथ है, इल्म भी है लेकिन तकवा साथ साथ है। और अगर ना हो तो आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम आइम्मा फरमाते हैं कि ख़ुद इल्म इंसान के लिए हिजाब अकबर बन जाता है, यानी सबसे बड़ा पर्दा बन जाता है। तो ये सबसे बड़ा पर्दा ना बनाएं, जितना पढ़ लिया है इस पर अमल करें ताकि तकवा साथ साथ आपके यहाँ दाखिल हो। बहुत शुक्रिया जवानों ने टाइम दिया, बहुत खुश आइन था कि इस तरह से जवान रात को इबादत के लिए जमाऊँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपने आप को मजबूत करें, इस माह रमज़ान से इस्तिफादा करें, अपने अज़्म इरादे हौसले को मजबूत करें। यह महीना बहुत कुछ देता है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा छोटी छोटी गलत आदतें जो आप आहिस्ता आहिस्ता पाल रहे हैं अपने अंदर। आपने महसूस किया कि आप इस महीने में 12-12 घंटे 14-14 घंटे उन आदतों से जान छुड़ा लेते हैं कि जो छोटी छोटी बुरी बुरी आदतें आप पाल रहे होते हैं जवानी में, ये सोच के कि जवानी का तकाजा है कि फला काम किया जाए। वो जवानी के तकाजे नहीं होते भाई, वो बुढ़ापे के तकाजे होते हैं। आप जवानी में बूढ़ा करने के लिए सिगरेट पीते हैं या इस तरह के काम करते हैं। अगर आप काबू पा रहे हैं 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे, इसका मतलब है खुदा आपको ताकत दे रहा है कि अगर आप इस पर चाहें पाबंद रहना चाहें तो आप बहुत अरसे यानी बहुत जल्दी इसको इस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े टाइम के लिए इसको छोड़ के रखते हैं। तो इंशाल्लाह ये महीना ऐसा महीना है कि जिसमें इंसान फैसला करे, इरादा करे, और अगर उस पर पाबंद और इस्तेहकामत दिखाए, मुस्तहकम रहे, इस्तेहकामत दिखाए, तो इंशाल्लाह वो बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ सकता है। तो इंशाल्लाह रमज़ान से भरपूर इस्तेफादा करें। इसके 10 दिन गुजर गए, इसके 20 दिन रह गए, इसके 20 दिनों में इंशाल्लाह खुदा आपको बहुत बरकत दे सकता है, बहुत कुछ नाजिल कर सकता है। इंशाल्लाह खुदा हमें तौफीक दे कि हम इस महीने की बरकतों से इस्तेफादा कर सकें। बहुत शुक्रिया। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद।